તારીખ 23/4/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 159 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 113
પ્રશ્ન 159 ચાલે છે. પ્રશ્ન સંખ્યા 112 પ્રશ્ન વો ચલા હે निरंतर दशा प्रकट करने की विद्या क्या है, कला क्या है? निर्विकल दशा को या अंतर्मुख होने की दशा को, एक ही बात है. तो उत्तर हो दिया कि भेद ज्ञान करने से निर्विकल्प हो सकते हैं. वेद ज्ञान राग से भी करना है और शरीर आदि पर पदार्थ जिसमें अपनत्व होता है, अपनत्व हो रहा है, जहाँ भी अपनत्व हो रहा है दो जगह होता है. भाव में अपने रागादि भाव है और द्रव्य में प्राप्त संयोग है, प्रारब्ध से प्राप्त संयोग है शरीर आदि. वहाँ से अपनत्व को छुड़ाना है और ज्ञान स्वरूप अपने स्वरूप में अपनत्व करना है. अपनत्व करना है मैंने अपनत्व का अनुभव करना है. अपनत्व का विकल्प करना है वो द्वैत ज्ञान की परिस्थिति नहीं है. अपनत्व का विकल्प करना वो भेद ज्ञान नहीं है. अनुभव करना वो भेद ज्ञान है. कितनी बात चली. अब आगे कहते हैं दूसरा पैराग्राफ से. वर्तमान में स्वयं ऐसी भेद ज्ञान की धारा प्रकट कर सकता है. क्या कहते हैं कि वर्तमान में मैंने अभी हाल में मनुष्य है, संगनी पंचेंद्रिय कोई भी जीव है, मनुष्य है या संगनी पंचेंद्रिय जीव है वो भेद ज्ञान की धारा प्रकट कर सकता है. उतनी पर्याय में प्रकट शक्ति है. आत्मा में तो अनंत शक्ति है, वो तो केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है. लेकिन वर्तमान में भेद ज्ञान प्रकट कर सके ऐसी शक्ति है. और भेद ज्ञान प्रकट करे तो निर्विकल्प अंतर्मुख स्वानुभव की दिशा में प्रकट हो जाए. उतनी बात है, जीव का उत्साह बढ़ना चाहिए. जैसे व्यापारी को अपने व्यापार के आइटम का पड़ता खाता है, पड़ता खाता है मतलब समझते हैं, पसंद होता है कि यहाँ से इस भाव में लेंगे हमारी दुकान पर इस भाव में बिक जाएगी, बीच में मार्जिन है प्रॉफिट. उतना ज्ञान होने से उनको उत्साह बढ़ता है, व्यापार करने का उत्साह बढ़ जाता है. ऐसे ही यहाँ कहते कि वर्तमान में कोई भी जीव, मुमुक्षु जीव, जिसको अपना आत्महित करने की अभिलाषा है, वो भेद ज्ञान प्रकट कर सकता है. इतनी शक्ति उसमें है. अभी तो परिभ्रमण की वेदना में नहीं आता है, लेकिन वो प्रारंभ है. मुमुक्षु की भूमिका का वो प्रारंभ है और भेद ज्ञान है वो मुमुक्षु की भूमिका की आखिरी हद है, चरम सीमा है. उत्कृष्ट मुमुक्षुता है और उत्कृष्ट मुमुक्षुता प्राप्त होने के बाद जीव को ज्ञान दिशा की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है. मोक्ष मार्ग की वहाँ शुरुआत होती है और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग समाप्त होता है, पूर्ण हो जाता है. तो पूरी लाइन है निर्वाण पद के लिए, मोक्ष के लिए यहाँ पोषण हो जाता है. उत्साह बढ़ना चाहिए. शुरुआत में पहला मैंने शुरुआत में जीव को विकल्प होता है, विकल्प दशा में है तो वेद ज्ञान संबंधित विकल्प होता है। सौ विकल्प दशा में ये प्रयत्न होता है, ये जो प्रयास होता है वो सौ विकल्प दशा में होता है। तो पहला प्रथम शुरुआत में जीव को विकल्प रूप हुए, परंतु सहज धारा जो प्रकट हो गए तो यह सहज धारा की ज्ञाता धारा की उग्रता के पीछे निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। दोनों बात लिया है, विकल्प रूप शुरुआत हो गए, फिर प्रयत्न से सहज हो गए, और वो सहज धारा को हो या ज्ञाता धारा को हो या वेद ज्ञान की धारा को हो, ज्ञाता धारा अस्ति से कहा, वेद ज्ञान की धारा नास्ति से कहा, इसकी उग्रता पहले विकल्प हो गए, वेद ज्ञान का स्टेज लिया, फिर प्रयोग में आगे बढ़े, प्रयास पुरुषार्थ बढ़े, फिर इसकी उग्रता हो गए तो निर्विकल्प दशा आ जाए। अपन तो थोड़ा और छानबीन करके इस बात को लिया है कि पहले विकल्प में तो अपना ज्ञान को पकड़ करके स्वपर प्रकाशक प्रणाम से लिखे, मेरे ज्ञान में ज्ञान है वो स्व है, और जो भी अन्य पदार्थ का प्रतिबिंब आता है वो और पदार्थ है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से दोनों को जानता है, मुझे परमे स्वपना नहीं करना है, परमे स्व पर का ज्ञान होना चाहिए, परमे अपना स्व का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्व को स्वरूप जाने, पर को पर रूप जाने, उसी का नाम स्वपर प्रकाशक है। फिर आगे बढ़े तो अपने ज्ञान की व्यापकता को देखे, मेरा प्रसरना व्यापना फैलना मेरे ज्ञान में है, वहीं मेरी सीमा समाप्त होती है। आगे जो राग है बगल में, शरीर आदि पर पदार्थ है, हाँ मेरा पसरना मेरा फैलना नहीं है, कि शरीर में शरीर के परमाणु में मैं व्यापक नहीं हुआ, एक भी परमाणु में मेरी हस्ती नहीं है, शरीर के जितने भी परमाणु हैं जड़ है, और 100% जड़ है, उसमें चेतना का कोई अंश नहीं है, इसलिए शरीर में मेरी व्यापकता नहीं, राग में मेरी व्यापकता नहीं, मात्र ज्ञान में मेरी व्यापकता है। ऐसे व्यापकता से ज्ञान को ग्रहण करे, पहले जानने की बात आई, अब ग्रहण करने की बात आई, सेकंड स्टेज वेद ज्ञान का। फर्स्ट स्टेज में स्व को स्वरूप जाने, ज्ञान को स्वरूप जाने, पर को पर रूप जाने, राग को राग रूप जाने, शरीर को शरीर रूप जाने, अन्य पदार्थ को अन्य पदार्थ रूप जाने, फिर व्यापकता का अनुभव करे, मैं मेरे ज्ञान में व्यापक रूप से अपने आप को अनुभव करता हूँ, बगल में राग है, बगल में शरीर है, और मेरी व्यापकता नहीं, मेरी व्यापकता मुझे मेरे ज्ञान में ही अनुभव गोचर होती है। गौर से देखे तो मालूम पड़ जाएगा, ध्यान से देखे तो मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन उपयोग को सूक्ष्म करके और ध्यान से गौर से भीतर में देखना है। फिर आगे बढ़े, ज्ञान की विद्यता ज्ञान में है, ज्ञान स्वयं को ही अनुभव कर रहा है, भजन करने का गुण ज्ञान में है और स्वयं को भजन करे ऐसा ही गुण है, वो एकांत है। क्या है? ज्ञान ज्ञान को ही भजन करता है, वो एकांत है। इसमें पर वेदन का कभी प्रवेश नहीं हुआ है, असाता का वेदन नहीं हुआ है, पर प्रवेश भाव का अभाव है। इसलिए कभी ज्ञान वेदन में मिलावट नहीं हुई, राग की भी नहीं और असाता आदि परमाणु की भी नहीं। इसलिए मिलावट नहीं होने से शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? कि एकांत शुद्ध है। आत्म भावना का बोल लिया है ना, दस उसमें ये चौथा बोल है, मैं एकांत शुद्ध सहानुभूति स्वरूप हूँ। मैं थोड़ा एक शब्द और लिया है, विज्ञान की आखिरी सीमा लेनी है, वो है मैं एकांत शुद्ध सहानुभूति स्वरूप प्रत्यक्ष हूँ। तो अपना वेदन से ज्ञान को स्वयं के रूप में अनुभव करना है और एकांत शुद्ध है वो, ज्ञान ज्ञान का वेदन करता है, उनकी एकांत शुद्धता है। तो यहाँ से अस्थि साहिब को बराबर पकड़ी। जब ज्ञान अपने आप को वेदन करता है और अपने आप को वेदन करने में किसी का भी निमित्त बीच में नहीं है, न मन का निमित्त है न किसी दूसरी इंद्रियों का भी निमित्त है, इसलिए वेदन रूप ज्ञान कभी परोक्ष होता नहीं, और जो परोक्ष होता नहीं वो प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि ज्ञान की दो ही अवस्था है, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष, तीसरी तो कोई अवस्था है ही नहीं। तो ज्ञान वेदन हमेशा प्रत्यक्ष होता है। तो अपनी प्रत्यक्षता को अनुभव करें, वेदन पूर्वक अपनी प्रत्यक्षता का अनुभव करें।
ऐसे वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष,
हाँ,
बाकी तो ऐसे तो परोक्ष
न्याय मति सूत्र है, इसलिए परोक्ष है, लेकिन वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। अब जो प्रत्यक्ष अंश दिखता है वेदन में, जो प्रत्यक्ष अंश दिखता है उस पर से अपना जो स्वरूप अनंत प्रत्यक्ष है उसको देख लेने का है। यहाँ से स्वरूप दर्शन है, यहाँ से आत्म दर्शन है, प्रत्यक्षता से अनंत प्रत्यक्ष अपने आप को प्रत्यक्ष अंश द्वारा प्रत्यक्ष तौर से प्रत्यक्ष करना है, ये विधि है। इतनी सी विधि है। फिर से अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप को वर्तमान प्रत्यक्ष वेदन अंश द्वारा प्रत्यक्ष तौर से, तो पद्धति है वो ये है, प्रत्यक्ष कर लेना है, बस। उसका नाम स्वानुभव है, उसका नाम स्वानुभूति है, उसका नाम स्वसन्मुक्ता है, अंतर्मुक्ता है, वो सब एक ही बात है। पर उसी का नाम धर्म है। जैन धर्म संप्रदाय वाचक नहीं है। ऐसे अंतर्मुख परिणाम से विषय कषाय के परिणाम का अभाव होता है, मंद होता है वो बात नहीं है, अभाव होता है, नाश होता है और वितरागता प्रकट होती है। सम्यक प्रकार से विषय कषाय के परिणाम पर जीत प्राप्त करने से जैन बोलने में आया है, इसलिए यहाँ जैनत्व को प्राप्त किया ऐसा बोलता है। क्या क्या? जैनत्व को प्राप्त किया ऐसा कहो, या जिनत्व को प्राप्त कहा ऐसा कहो। इसलिए ज्ञानी को वंदन नमस्कार करने में आता है कि उसने जिनत्व को प्राप्त किया है। हम जिन जिन को प्राप्त बंधन करते हैं मंदिर में जिन बंधन होता है, तो वहाँ अंशरूप जिनत्व है, वहाँ पूर्ण रूप जिनत्व है, जाति दोनों की एक है। जो आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ स्वानुभूति में, वो आत्मज्ञान की जाति और केवल ज्ञान की जाति एक है। जाति भेद बिल्कुल नहीं है। जो भेद है वो गति का है, जाति का नहीं, शक्ति का भी नहीं। और जो उसका स्थान है उसका भी नहीं। स्थान मैंने क्या है, असंख्यात प्रमाण उसका व्यापक होने का है। केवल ज्ञान भी आत्मा मुख्य असंख्य प्रदेश में पैदा होते हैं, और सम्य ज्ञान भी आत्मा के असंख्य प्रदेश में प्रसरता है। स्वानुभूति तो रहने की जगह एक सरखी है, स्वकृत प्रकाशक शक्ति भी ऐसी है, जाति भी एक है, फर्क है वो गति में है। केवल ज्ञान में जितना ज्ञान का विकास है उतना नीचे चतुर्थ गुण स्थान या बारहवा गुण स्थान तक नहीं है, उसका अभाव है। क्या है, जितना केवल ज्ञान में ज्ञान का सद्भाव है उतना सद्भाव बारहवा एक चार से बारह गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग में सद्भाव नहीं है, उसको गति कहते हैं। स्थिति गति शक्ति और जाति चार भेद लिया। स्थिति असंख्यात प्रमाण देह प्रमाण, जाति सम्यक ज्ञान, पहले मिथ्या जाति थी अभी सम्यक हुई, दो ही जाति है। गति में सद्भाव और अभाव लेना, शक्ति में स्वतर प्रकाशक लेना। क्या कहा यहाँ जो लिया है कि पहले विकल्प रूप होता है विचार दशा में, फिर जैसे जैसे प्रयोग में व्यापकता से वेदकता से आगे बढ़ता है तो सहज धारा प्रैक्टिस होने से सहजता प्राप्ति होती है। वो तो हर बात में होती है, पहले ध्यान से काम करना पड़ता है कोई भी बात का, फिर शायद दूसरी बातें करते करते काम कर सकते हैं। कार ड्राइविंग करने वाले को पहले बहुत ध्यान देना पड़ता है कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। क्यों, कि ब्रेक के बगल में ही एक्सीलेटर है, भूल से भी एक रोकने की चीज है एक स्पीड देने की चीज है, कंट्रास्ट है, कंट्राडिक्टरी है, दोनों पॉइंट कंट्राडिक्टरी है। पेट्रोल दिया गाड़ी तेजी से भागेगी, गति बढ़ जाएगी, पग रोक दिया लगा दिया गति रोक देगी। गति रोधक भी बाजू में है, गति देना का भी बगल में। सीखने के टाइम से बहुत ध्यान से काम देना पड़ता है, भूल से भी रोकने के जगह पेट्रोल दे दिया मर जाएगा कोई ना कोई, या तो खुद या तो सामने वाला। ठीक, जिसको कंट्रोल आ जाता है चलाने का प्रैक्टिस करने के बाद, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हमको बातें मत कराना हम गाड़ी चला रहे हैं। बोलता ऐसा कभी कि हमको बात नहीं कराना हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है। वो खुद नहीं कहेगा कभी हमको बात नहीं कराना, कितने भी बात करेगा दुनिया भर की पंचायत करेगा। आज अखबार में ऐसा पढ़ा, आज टीवी में ऐसा देखा, सब बात करेगा दुनिया भर में। क्यों, सहज होगी बात, प्रैक्टिस के दौरान सहज होगी। ऐसे यहाँ भी वेद ज्ञान का प्रयोग की प्रैक्टिस चलती है तो सहज धारा प्रकट होती है।
ये सरल धारा स्वभाव
सहज है
जी, और वो विभाव सहज है
तो वहाँ विभाव में भी सहजता आती है और स्वभाव में भी सहजता आती है।
जबकि विभाव की सहजता में कभी भी चुप भी सकता है।
विभाव की सहजता मर्यादित है और स्वभाव की सहजता मर्यादित है, उतना फर्क है। इसलिए विभाव मिट सकता है, स्वभाव कभी मिटा जाता नहीं है। अमित स्वभाव है, स्वभाव है वो अमित है। शास्त्र में अमित शब्द प्रयोग किया है। ज्ञाता धारा की उग्रता, फिर सहजता आने के बाद क्या होता, क्या होता है उग्रता? उग्रता कब आती है? जितनी प्रत्यक्षता ज्ञान में अधिक स्पष्ट होती है उतनी उग्रता विशेष आती है। इसका एक दृष्टांत है। एक चतुर्थ गुण स्थान वर्ती क्षायक सम्यक दृष्टि 12 अंगधारी हो गए। कैसा हुए? उतना इसका ज्ञान हो गए। और एक मुनिराज छठा सातवां गुण स्थान धारी नव तत्व का भी नाम भी याददाश्त में नहीं रहे। स्वरूप को ग्रहण करने की स्पष्टता प्रत्यक्षता किस में ज्यादा है? मुनिराज तो उसको बाह्य ज्ञान का उघाड़ नहीं है, अंतर ज्ञान में स्वरूप ग्रहण करने की ताकत जो मुनिराज में है वो चतुर्थ गुण स्थान वाले साधक को नहीं है। दोनों धर्मात्मा है। फर्क क्या है कि जितनी स्पष्टता ज्ञान की स्पष्टता मुनिराज को होती है उतनी ज्ञान की स्पष्टता चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होती है। भले ही 12 अंग का ज्ञान हो, लब्धि हो 12 अंक का ज्ञान। वो तो वितरागता के कारण से है। मुनिराज को वितरागता अधिक है और चतुर्थ गुस्थान में उतनी वितरागता नहीं है। वहाँ 3 कसाय की चौकड़ी विद्यमान है चतुर्थ गुस्थान में, और छठे सातवें गुस्थान में 3 कसाय की चौकड़ी का अभाव हुआ है। एक ही बाकी रही है, वहाँ एक गई है 3 बाकी है। यहाँ 3 गई है 1 बाकी है। यहाँ पहली गई है पीछे की 3 बाकी है, यहाँ पहले की 3 गई है पीछे की 1 बाकी है। इस तरह से बाकी है। तो वितरागता के कारण से निर्ग्रह हो ही हो। अब वहाँ यहाँ तो ज्ञान की बात करते हैं, चारित्र की बात नहीं करते। कि चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञान का इतना उघार संभवित है कि किसी को 12 अंक का ज्ञान भी चतुर्थ गुण स्थान में हो जाए,
संभव है? 12 अंक का ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान में हो जाए,
हो सकता है? तो चतुर्थ गुण स्थान में केवल ज्ञान की लब्धि तो है ही, 12 अंक का तो क्या हिसाब है इसके पीछे? तो और मुनि को बिल्कुल शास्त्र ज्ञान नहीं हो गए, कितना अनपढ़ हो, कभी शास्त्र पढ़ाई नहीं हो, क्या शुरू से ही जन्म से अनपढ़ हो और शास्त्र पढ़ाई नहीं हो, प्रयोग करते करते ज्ञानी हो गया, ज्ञानी होकर के मुनि हो गया, कोई आपत्ति नहीं है उसमें? फिर भी स्वरूप को ग्रहण करने के स्पष्ट रूप से ग्रहण करने की ज्ञान की निर्मलता जो मुनि को होती है उतनी सम्यक दृष्टि को नहीं होती है।
यहाँ पे जो उग्रता शब्द है वो उग्रता विजित गुण में लेने का स्पष्टता में क्या?
दोनों कोऑर्डिनेशन होता है। वीर्य गुण से उग्रता आती है और उग्रता आती है तो निर्मलता और स्पष्टता आई जाती है। जितनी उग्रता विशेष उतनी निर्मलता भी विशेष और उतनी स्पष्टता विशेष। स्वरूप ग्राहक ज्ञान की बात है, पर पदार्थ को ग्राहक करने ग्रहण करने वाला ज्ञान की बात नहीं, ये स्वरूप ग्रहण ज्ञान की बात है, जो स्वरूप को ग्रहण करता है इसकी ये बात है। ऐसे उग्रता होने से निरीक्षक दशा प्रकट होती है। यह ज्ञाता धारा की उग्रता को सहजपने करने में उसे प्रयत्न चाहिए, जीव को पुरुषार्थ चाहिए। उग्रता में पुरुषार्थ का रोल है, उग्रता आने में पुरुषार्थ के परिणमन की भूमिका मुख्य है। और मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ की ही प्रधानता है, मुख्य भूमिका पुरुषार्थ की है, क्योंकि श्रद्धांत तो हो चुका स्वरूप का, ज्ञान भी हो चुका स्वरूप का। अब जितनी पुरुषार्थ, जितना पुरुषार्थ बढ़ेगा उतना गुणस्थान का ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर के गुणस्थान में आएगा। बस अनादि का अभ्यास है, इसलिए उसे बार बार एकता बुद्धि हो जाती है। जीव को मिथ्यात्व अवस्था में संसार में अनादि का उल्टा अभ्यास, मैंने उल्टी प्रैक्टिस है, और उल्टी प्रैक्टिस को गाढ़ करता है। जैसे कोई पहले दरिद्री था, हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा ही है, पहले से सब सामान्य आर्थिक स्थिति वाले ही होते हैं, कुछ पैसा मिलता है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रस भी बढ़ता जाता है। इतना मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला, फिर अधिक अधिक गाढ़ रस होता है। वो उल्टी प्रैक्टिस है, क्या है अनादि की उल्टी प्रैक्टिस चल रही है, उसको अभ्यास कहते हैं। इस प्रकार के परिणमन को अभ्यास कहते हैं। अतः बार बार एकता बुद्धि, एक पने का अभिप्राय बार बार परिणमन में होता रहता है। यह एकता बुद्धि में से भिन्न होने के लिए, इस प्रकार की एकता बुद्धि तो बहुत गाढ़ की है, उसमें से भिन्न होने के लिए, अलग हो जाने के लिए प्रथम विकल्प रूप से यह जुदा वैसे किया करे, यहाँ से शुरुआत करे, विचार से विकल्प से शुरुआत करे, फिर चलिए ये बात आप बड़ा विस्तार से खोलते हैं। तो पीछे अभ्यास रूप से होता है, मैंने प्रैक्टिकल साइड से प्रैक्टिस होती है, पहले विकल्प से चालू करे और विकल्प में रुके नहीं, फिर प्रैक्टिकल प्रयोग का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे अभ्यास होने पर मैंने प्रयोग से सहज धारा प्रकट होवे, तो उसके बाद निर्विक दशा की प्राप्ति होती है। पहले विचार से विकल्प से चालू होता है, फिर प्रयोग से अभ्यास होता है, और फिर उसमें उग्रता आने से इसके बाद निर्विकल दशा की प्राप्ति होती है। उसको द्रव्य पर दृष्टि करके ज्ञाता धारा की उग्रता करें। क्या करना चाहिए जीव को? दृष्टि द्रव्य पर रखना, पर्याय पर मत रखना, क्योंकि ये जो विधि की बात है वो पर्याय विषयक है। ऐसे परिणाम करना, विकल्प करना, प्रैक्टिस करना, ये सब पर्याय की बात है। तो चर्चा चली तो पर्याय की, विधि का प्रकरण ही पर्याय का है। और जहाँ दृष्टि रखने की है वहां काम होने का है ही नहीं, इसलिए थोड़ा कार्य पद्धति उत्पतांग है ऐसा लगता है, जल्दी से समझ में नहीं आता, जल्दी से पकड़ने में नहीं आता, इसलिए ये काम थोड़ा कठिन लगता है। उतनी सी बात, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम चलते हैं यहाँ से, स्वाध्याय होने के बाद हम घर जाएंगे। तो जैसा उठते पहले ही विकल्प आ गया कि घर
जाना है,
तो हमारी दृष्टि कहाँ है? घर पे है। तो वहां तो नहीं चलते हैं, चलते हैं तो इधर चलते हैं। चलने का कार्य तो इधर होता है, यहाँ से बाहर निकले फिर रोड पे आए फिर रोड पे चलने लगे। तो जहाँ चलते हैं वहाँ घर नहीं है, और घर है वहाँ चलने का सवाल होता नहीं, वहाँ चलने का बंद हो जाएगा। तो हम ऐसा काम तो करते हैं, दृष्टि को हो या लक्ष्य को हो, या लक्ष्य की बात है, मोक्ष है ना, समय दर्शन प्रगट नहीं हुआ है, तो यहाँ दृष्टि लक्ष्य के स्थान में है। कि लक्ष्य को, लक्ष्य तो रखना स्वरूप पर, लक्ष्य कहाँ रखना? स्वरूप पर। लक्ष्य पर्याय पर नहीं रखना, पर निकलती तो नहीं बिगड़ती है, पर्याय के लक्ष्य से पर्याय नहीं बिगड़ती। लक्ष्य स्वरूप पर होना चाहिए और कार्य पर्याय में सहज रूप से चलना चाहिए। तो आत्मभावना में वो पैराग्राफ ऊपर एक सूचना लिखा है कि स्वरूप लक्ष्य पूर्वक ज्ञान वेदन द्वारा, ज्ञान सामान्य वेदन द्वारा भाने योग्य भावना, ऐसे सूचना दिया है। तो एक साथ डबल काम हम करते ही हैं। यशो विजय जी ने लिया है जो कृपालु देव ने जिसको परोसा है, मन महिलानु वाला ऊपरे बीजा काम करंतरे। ये महिला है घर के काम करती है, उसका ध्यान कहाँ है? अपने धनी पे, अपने पति पे। कभी वो घर में है, दूसरे कमरे में पढ़ता है, या दुकान गया है, या अभी आने का टाइम हुआ है, अभी जाने का टाइम हुआ है, अभी वो करेगा वो करेगा वो होगा वो होगा। लक्ष्य वहाँ है, काम करती है रसोई का, कपड़े धोने का, बर्तन साफ करने का। डबल काम होता है कि नहीं होता है? तो वह दृष्टांत बहुत फिट बैठा है। तो उसको उसको धनी पर प्रेम है। तो जहाँ प्रेम होता है, जहाँ वहाँ आसक्ति होती है, वहाँ लक्ष्य रहता है। कैसे बनता है? वहाँ लक्ष्य वहाँ रहता है, काम चलता रहता है। वहाँ कभी नमक की जगह शक्कर नहीं डाल देती, और शक्कर की जगह नमक नहीं डालती। चाय बनाती है तो नमक नहीं डालेगी, शक्कर ही डालेगी। भले ध्यान उसका उधर नहीं हो, लक्ष्य उधर हो, वहाँ शक्कर ही डालेगी।
अपन ऐसा देवे तो ज्ञान तो पर्याय और दृढ़ का करना, और दृष्टि स्व की करनी।
ज्ञान दो तरह का होता है, एक लक्ष्य वाला और एक बिना लक्ष्य वाला। तो लक्ष्य कहाँ है? पर्याय और दृढ़ दोनों का ज्ञान करना, तो दोनों का लक्ष्य थोड़ा थोड़ी करना है, समझे? ये भेद छांटने की बात है। लक्ष्य कहाँ होना? ध्रुव में, स्वरूप पर। फिर पर्याय का ज्ञान हुए, बिना लक्ष्य कोई आपत्ति
नहीं
है। अच्छा, हमारा लक्ष्य वहाँ घर पे है, चलते हैं तो रोड पे हमारा उपयोग बता है। कहते हैं खड्डा में पग नहीं, पैर नहीं रखे, कहीं गंदगी में पैर नहीं रखे, कहीं पत्थर पड़ा हो तो ठेस नहीं लगाए, और कोई ट्रैफिक आए तो जरा साइड में चले, आगे से पीछे से आ जाती हो तो उपयोग तो जाता है, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलता। उपयोग जाता है तो लक्ष्य बदल जाता है, और घर का रास्ता छूट जाता है, दूसरा रास्ता तो छोड़ जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, होता है क्या? लक्ष्य वाला ज्ञान अलग है और उपयोग वाला ज्ञान अलग है। चलने में पूरी सावधानी है, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं भी गिरावट नहीं होगा, लगेगा नहीं, ठेस लगेगा नहीं, कहीं भी होगा नहीं। उपयोग में उतनी सावधानी होने पर भी लक्ष्य नहीं बदलता। ऐसे लक्ष्य हमारे स्वरूप पर चलना है, परिणाम की चाल है, उसमें सावधानी से चलना है। पर को पर, स्व को भेद छाटना है, और भेद ज्ञान चालू, उसमें इतना सूक्ष्म भेद ज्ञान चले कि जड़ के एक परमाणु में भी अपनत्व होने नहीं दे, तो और राग के एक अंश को भी अपने में मिलावट करने नहीं दे। कितनी सावधानी चले फिर भी लक्ष्य उस पर नहीं रहे, उसको कहते हैं भेद ज्ञान की कला। ये अध्यात्म विद्या है। दृष्टांत भी है चलने का, आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं, इसे परिणाम भी चाल है। आप चलते हैं तो किसी भी टक्कर में नहीं आते, खड्डा बड्डा हो तो उसमें साइड में चल जाते हैं, घंटी पड़ी है तो उस पर पैर नहीं रखते, बात करते हैं इधर उधर देखते हैं तो भी इतना तो ख्याल रखते ही है, तो बात करते हैं इधर उधर देखते हैं पर उधर नीचे भी कहीं भी खड़ा वड़ा में या गंदगी में पैर नहीं रहे। इतनी सावधानी हो तो भी लक्ष्य तो वहाँ एक ही जगह रहता है, उपयोग तो बहुत घूमता है, उपयोग तो कहीं जगह घूमता है, लक्ष्य नहीं बदलता है। तो किसकी कीमत हुई?
लक्ष्य
की। उपयोग की कीमत कुछ नहीं है, इधर उधर कहीं जगह उपयोग गया, लक्ष्य की ताकत बहुत है। इसलिए लक्ष्य का महत्व बहुत है। क्या है लक्ष्य का महत्व? बहुत है। और ये स्वरूप लक्ष्य सबसे प्रथम भाव भाषण में होता है। पहले पूर्णता का लक्ष्य होता है, फिर पूर्णता का लक्ष्य होने के बाद सत्पुरुष विद्यमान हुए तो उसका लक्ष्य होता है, और फिर आगे बढ़ता है तो स्वरूप लक्ष्य हो जाता है। इसको यथार्थ लक्ष्य कहने में आता है। यथार्थ लक्ष्य पूर्वक ज्ञान की प्रवृत्ति आत्महित को सफल बनाती है, और विपरीत लक्ष्य पूर्वक ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान की कितनी भी प्रवृत्ति हो, त्याग की कितनी भी प्रवृत्ति हो, धर्म के क्षेत्र में दो प्रवृत्ति होती है, एक शास्त्र ज्ञान की और एक पर पदार्थ पर विषयों के त्याग की। कितनी प्रवृत्ति हो, लक्ष्य जिसका गलत है उसका सब गलत है, लक्ष्य जिसका ठीक हुआ शुरू से ही पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत किया। इसलिए वेदना के साथ जुड़ा हुआ है पूर्णता का लक्ष्य, कि परिभ्रमण की वेदना आई, उदासीनता हो गई, अब पूर्णता का लक्ष्य साथ साथ हो जाना चाहिए। 128वां पत्र है वो कृपाल देव, एक ही पत्र में है ना, पहले चार पैराग्राफ में वेदना का विषय लिया है। लेकिन किसी भी कीमत पे मुझे छूटना ही है, वो सब कनेक्टेड है वेदना के साथ, वो बात कनेक्टेड है। अगर पूर्णता का लक्ष्य नहीं हुआ तो वेदना यथार्थ रूप से आई
नहीं
है, इसका प्रूफ है वेदना की यथार्थता का। जब लक्ष्य बराबर हुआ पूर्णता का, तो आगे बढ़ करके सत्पुरुष का पचर पहचान करेगा, उसका लक्ष्य हो जाएगा, फिर उसका लक्ष्य के बाद स्वरूप का लक्ष्य हो जाएगा। तो प्रथम संकेत है, वो दूसरा संकेत हो गया, फिर तीसरा संकेत सहज है सहानुभूति। इस तरह से पूरी चेन है। वो तो क्या कहा है कि इसके बाद उसको द्रव पर दृष्टि, दृष्टि मैंने लक्ष्य करके ज्ञाता धारा की उग्रता कर ली है, कि मैं नायक हूँ, ये लक्ष्य का विषय है। मैं नायक हूँ वो लक्ष्य का विषय है। मैं नायक हूँ, नायक हूँ, नायक हूँ, तीन दफे लिया। क्यों? वजनवा देना है, लक्ष्य उसका करना है, उसका प्रभुत्व है। सारे परिणाम पर प्रभुत्व किसका है? लक्ष्य का है। इसलिए तीन दफे लिया है कि मैं नायक हूँ, नायक हूँ, नायक हूँ। तीन दफे लिखने के पीछे, बोलने के पीछे क्या अभिप्राय है? कि वजन वहाँ रहता है, वजन भेद ज्ञान की धारा पे रहता
नहीं है,
नहीं है। ये वो तो पर्याय है, वो लक्ष्य करने की चीज नहीं है। पहले ही कितनी सावधानी से होता है, फिर भी लक्ष्य तो स्वरूप का ही है। जिसका लक्ष्य हुआ उसकी दृष्टि होगी, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय, ये दृष्टि का विषय। तो आगे जाके जब निर्विकल दशा होगी मिथ्या दृष्टि पलट करके सम्यक दृष्टि हो जाएगा और ईश्वर की दृष्टि हो जाएगी। तो दृष्टि तो पर्याय को देखती नहीं, तो उसमें तो कोई आपत्ति है नहीं। ज्ञान पर्याय को जानता है लेकिन लक्ष्य करके जानने का नहीं है, उतना ख्याल में रखने की बात है। थोड़ा विस्तार किया है।